स्मृति से और जो रात साल में कहा है उसके बाद अपन स्मृति के गुणान द्वारा अभी शुरू करते हैं।
ब्रह्मचारी हेमचंद जी उनकी पत्थर मोर वगैरह सदा दिव्य
ओम नमस्ते नमो वैज्ञानम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम् जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम् एष सुरासुर मनुसिंह वंदितम् दोदघायिकम् मवलम् परमामि वड्यमानम् तीर्थम धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार की गाथा 172 के आधार से अपना लिंगरण के बोलों की चर्चा हमने की है और प्रारंभ में तो दो दिन मैंने उनको अपने शब्दों में बोला है, अब स्वयं अपन देखते हैं कि आचार्य देव ने क्या लिखा है। वही शब्द मैंने बोले हैं अपने शब्दों में और उसका विशेष अपन यहाँ समझते हैं। तो आपके पास जो हाथ में ये प्रवचन सार जी के अलिंगरण के बोल हैं इनको आप निकाल लीजिए और वो पहला बोल जो खुद अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है वही इसमें लिखा है। ये सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रारंभ के 5 बोल नास्तिपरक है, छठवां बोल पूर्ण रूप से अस्थिपरक है और बाद के बोल उपयोग जो लक्षण है वो लक्षण का लक्षण बिगाड़ा जीव ने तो उसको सुलक्षण बनाया कि ये तुम्हारा लक्षण उपयोग का बराबर नहीं है और वो 7वें से लेकर 11वें तक जाता है और बाद में फिर इंद्रिया मन जीवत्व आदि है फिर पुरुष स्त्री आदि के भेद आदि ये सब निकाल बाहर किए, बाहर की चिन्ह आदि फिर गुण भेद पर्याय भेद ये भी निकाल के जो अनुभव होता है वो अनुभव ही आत्मा ही सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहला बोल लिखा है ग्राहक ज्ञायक जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये अमृत चंद्राचार्य देव का वचन है वाक्य है, उसका सारांश यहाँ एक लाइन में लिखा है आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव स्वयं से है, इंद्रियों से नहीं आत्मा इंद्रियों से जाने ऐसा वो गेय पदार्थ नहीं है। अभी दूसरा भी पढ़ते हैं, तीनों का एक विशेष सारांश मैं आपको कहूंगा। ये पहला ख्याल में आया इसमें ग्राहक शब्द है ध्यान देना, ग्राहक माने ज्ञायक, तो ज्ञायक जो है वो लिंगों माने इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता तो ये जो ज्ञायक शब्द है कर्तरीवाच में है ना आत्मा इनके द्वारा नहीं जानता, ये कहा ना, तो जो गे है स्वयं गे और पर गे स्व पर दोनों को इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। अब दूसरे बोल में कर्म लेते हैं, देखो जो अभी अभी गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया बताया था कर्ता कर्म आया था ना सब, तो देखो दूसरे में टीकार्थ में ग्रह माने गे जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता। अब गे कौन होता है, ज्ञान के विषय को गे कहते हैं, ज्ञान के विषय को गे कहते हैं, वह अलिंग्रहण है इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। देखो पहले मैं कहा था आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, अब कहते हैं आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से जानने में नहीं आता माने जानने में आने वाला पदार्थ कर्म गे होता है। इसके लिए मैंने पहले बता चुका हूँ, ख्याल नहीं इस बार अभी तो नहीं बताया, इसके पहले बताया था, आप एक ऐसा छोटा सा चार्ट अपने दिमाग में बना लें, कर्ता कर्म करण और क्रिया, इसके बिना बात पूरा नहीं होता, कर्ता कर्म करण और क्रिया। तो कर्ता है आत्मा, अभी ज्ञाय को समझना ये भाषा मुझे गुरुदेव ने कहा था, वैसे पर्याय हो तो पर्याय है लेकिन द्रव को कहा आत्मा और कर्म हुआ कौन गे विषय, विषय को क्या कहेंगे कर्म माने विषय आप लिख लें ज्ञान का विषय और साधन करण जिसकी मैंने कल चर्चा की थी और रह गया था, ये बात पकड़ में आ गई तो ये बहुत मजेदार लगेगा आपको। कल लगा होगा कि इसके बोल नहीं चले, साधकतम करण कौन है? ज्ञान, जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, कौन? भाव सुप्त ज्ञान। और समय साल में लास्ट गाथाओं में कहा ना कि पांच ज्ञानों से किस ज्ञान से मोक्ष होता है, इस पर जयसनाचार्य देव ने तो कहा भाव सुप्त ज्ञान से मोक्ष होता है। अवधि मनोपरे की जरूरत नहीं, उनका विषय रूपी है, और केवल ज्ञान तो वो फल के रूप में प्रकट होता है। तो कर्ता आत्मा और वो विषय हुआ ज्ञान के द्वारा जाना गया पदार्थ, और करण माने ज्ञान पर्याय, करण माने ज्ञान पर्याय, और उसके बाद क्रिया, क्रिया में लेना जानने का फल, क्रिया को बोलते हैं जानने का फल। तो एक पहली लाइन में ज्ञाता ये हुआ कर्ता, और जाना गया पदार्थ वो हुआ ज्ञेय, और जानने का साधन हुआ ज्ञान, और जानन क्रिया जो हुई उसको कहते हैं ज्ञप्ति। बल्कि बोलने की आदत में बोलता हूँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति। ज्ञान माने करण साधन को पहले रखा मैंने, क्योंकि हमें उर्द करना, आप समझ लेना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति। इसी तरह से आप लगा लीजिए ध्यान, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति। तो प्रमाण भी ज्ञान पर्याय है, ज्ञान तो ज्ञान पर्याय है, नहीं भी ज्ञान पर्याय है, कैसी क्या है वो सब इसके विस्तार में बाद में। और क्रिया, क्रिया माने जानन क्रिया, उसको कहते हैं जानने का फल। तो कल मैंने तीन बातों का नाम लिया था, विषय साधन और फल। यदि आपके विषय में भूल है, कल पंकज भाई पूछ रहे थे, आपने दूसरी बताई, हाँ साधन में भूल चल रही है, हम ये बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान है अपना और कहता है तुपना, जिसके लिए मैंने शुरू में बोल पढ़ा दिए, गियों का नहीं, इंद्रियों का नहीं, राग का नहीं, प्रकाश का नहीं, उनसे नहीं, उनका नहीं, उनसे होता नहीं, ये सब मैंने बताया इसको। फिर किसका है? ज्ञायक का है, ज्ञायक से है, क्योंकि ज्ञायक में। तो इस प्रकार से अनुमान का भी लिख लेना, क्योंकि ये बोल आने वाले है। अनुमाता बराबर, अब आप भरेंगे तो विषय क्या कहलाएगा नाम? अनुमेय, अनुमान। और साधन क्या होगा? अनुमान ज्ञान। अनुमाता बराबर अनुमेय, अनुमान और अनुमिति, ये मैंने अनुमान लगाया। और इसके बाद अब ध्याता लिखो, ध्याता बराबर विषय को क्या कहेंगे? ध्येय। साधन को क्या कहेंगे? ध्यान। ध्यान किसकी? वो ज्ञान की पर्याय। और फल क्या मिलेगा? ध्यायति, ध्याता है, तो जो क्रिया होती है वो फल। अब सुन लेना ध्यान से, इसलिए इसका मजा तब आएगा। यदि विषय में भूल है, हमने यदि पंच परमेश्वर को भी विषय माना है मेरे मोक्ष का, तो आपको अतीन्द्रिय सुख और धर्म होने वाला नहीं है, फर्क बात समझे ना। पांच इंद्रिय के विषयों की तो बात ही दूर रहो, जैनी पापी नहीं होते और पापी जैनी नहीं होते, इसलिए उसको तो आउट किया। जैन दर्शन पाप में जाने नहीं देता, पुण्य को धर्म मानने नहीं देता, कहने देता, करने देता पाप से बचने के लिए। तो इस प्रकार से अपने को विषय में पहले भूल निकालना, कौन होना चाहिए विषय में, उसके बाद साधन कौन होना चाहिए। हमने सात दस उपवास किए, बरघोड़ा निकालो, उससे हमें मोक्ष हो जाएगा, कर्म समन्वय निद्रा हो जाएगी, मान का टीका और लगा लेगा, खुद ही लगाता है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में कहेंगे कि उसको जो फल मिलना चाहिए, अब काय में भूल हो रही उसकी, साधन में। उसने साधन, जब तक साधकतम करण जो मैंने कल सिद्ध किया था, इसीलिए किया था, जब तक उसको साधकतम करण साधन नहीं मानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक उसको अलिंग ग्रहण माने अलिंग ग्राह अपना भगवान आत्मा समझ में नहीं आ सकता, पकड़ में नहीं आ। तो उसके लिए कहा कि साधन की भी भूल तुम करते रहोगे, जैसे श्रीमद जी ने लिखा, यम नियम संयम आप पियो, उन्हें त्याग विराग अथाग्नि वो छंद भी आप समझ नहीं, इतने शॉर्ट में समझ जाना कि वास्तविक साधन भी नहीं है, नहीं है, होते तो है, तो बर होता है तो बराती भी होते हैं, ख्याल में ना, उसमें सब समझ लेना, ये होते हैं, वो शोभा है। तो इसी प्रकार से यहां इसमें देखो दूसरे बोल में कहा ग्राह माने गे, ये जिसको कह रहे हैं अभी आत्मा की महत्व ये अधिकार है प्रवचन सार का, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता वो अलग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, तो ये सत्य की प्राप्ति होती है। सारांश, आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, आत्मा इंद्रियों से ज्ञात हो ऐसा ये पदार्थ नहीं है। आत्मा स्वज्ञान प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है, हो ऐसा हो ये पदार्थ अस्थि से। यदि इसके और भी गुरुदेव श्री के मैंने बहुत लिखे हैं, ये सब भेजे थे लेकिन उसका भी साठ करके इसमें लिखा है और गुरुदेव की किताब भी है अलिंग ग्रंथ के प्रवचन की। आपको विस्तार से जानना है, सूक्ष्मता से उसमें से जानना है। हम अपने समझ प्रमाण में आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की, सब गुरुदेव का ही प्रस्तुत किया माल है। तीसरा, और अपने को पकड़ में आता है तीसरा भूल, तो क्या है तीसरा? आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। तो लिखा है आचार्य ने, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रियगम इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता है वह अलिंग ग्रहण। अब इसमें आपको लगे क्या फर्क है कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी कह रहा है वो और अनुमान भी लगा रहा है। अब इंद्रिय अनुमान की बात समझो, मन वाला मत अभी गुण करो, मन तो उससे भी होता है। यहाँ चीटियां है, यहाँ सकर बिखरी पड़ी है, उनकी आंख है, वो कैसे यहाँ ढूंढ ढूंढ के इतना प्रयास करेंगे, घंटों लगे दिन लगे और यहाँ पहुंच जाए। अरे घंटों दिन नहीं लगता होंगे, आप छोड़ के जाओ एक आध घंटे बाद लौटो तो देखो तो यहाँ पर चीटी कहां से आ। कोई इंद्रिय ज्ञान से भी उनको जहां से गंध आदि आती है ना, बहुत सेंसिटिव उनकी लोग और वहां पहुंच जाएंगे। तो ये जीव सोचता है मुझे आत्मा की कोई गंध कोई अवयव कोई पार्ट कोई कंपोनेंट कुछ दिख जाए इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक, तो फिर मैं उसको पूरा समझ ले रहा आत्मा। जैसे मैंने कहा था ना पहले दिन कि नदी में कोई हाथी डूबा है, लेटते हैं ना हाथी पड़े रहते हैं वहां और वो थोड़ा सूंड निकाले तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अरे हाथी रहा, अरे ऐसा कुछ बता ना उपाय, आ रहा आत्मा, ऐसा है क्या? तो ये इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। सारांश लिखा है, आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हुए ऐसा ये नहीं है। चौथा, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें किसा राग हो गया, अनुमान मात्र से ज्ञात होने योग ऐसा अनुमेय के आत्मा नहीं। अनुमेय शब्द हमने जो वो बना दिया ना आपका चौकट, अनुमान इक्वल टू अनुमेय, अनुमान और अनुमिति। मैं तो करण साधन पहले रखता हूँ, अनुमान और अनुमान, अनुमेय और अनुमिति, कि सब आत्मा इंद्रियों का विषय तो नहीं है। तब तो हम अनुमान से जान सकते हैं, दूसरा तो कोई उपाय रहा नहीं। तो आचार्य इसमें एक स्वीकृति की ध्वनि इसमें है क्या, हाँ अनुमान से अनुमेय तो बनेगा। एक लोग न थी स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता आगे सिद्ध करेंगे, क्योंकि जब तक देशना वाचक शब्द को सुना तो द्रव श्रवण हुआ, ऐसा लिखा है श्लोक वार्तिक में। ये जो अपन शब्द सुनते हैं मति ज्ञान, सुनना माने वो भी जानना, और उस वाचक से वाच का ज्ञान होना वो श्रुत ज्ञान, तो उसको कहते हैं भाव श्रवण। क्या बराबर उसका शब्द का अर्थ हो समझ रहे हैं, ख्याल में ले रहे हैं? तो यहाँ वो ऐसा सोचता है आत्मा अनुमेय मात्र होगा, तो कहते नहीं अनुमेय मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश लिखा है, अन्य द्वारा आत्मा केवल अनुमान से ज्ञात हो वो ऐसा प्रमेय पदार्थ नहीं है। यदि आत्मा केवल अनुमान का ही विषय हो तो वह कभी भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तो जैसे तीसरे उसमें धुआंडा देखा अग्नि है, तो आचार्य कहते हैं अपन लोक में किसी ने अग्नि भी देखी और धुआं भी देखा, तब वो कहता है मान लो मैंने अग्नि नहीं देखी और दोनों साथ खड़े और आप कहते हैं वहां आग लग गई, क्योंकि देखो कितना धुआंडा उठ रहा है, तो हम सोचने लगे आग क्या होती होगी। तो आपने प्रत्यक्ष आग देखी है और उससे उठता धुआं देखा है, तो आपका वो बाहर का इंद्रिय ज्ञान का विषय बन जाता है और उससे आपको अग्नि अनुमेय हो जाती है। तो ऐसा आत्मा नहीं है, पहले अनुमान तो लगाएंगे। जो अभी कहा था ना कि टोपी को किसने जाना, कोई जानने वाला है कि नहीं, तो उससे हाँ जानने वाली कोई चीज तो है, और ये भी पहले स्वीकार हो तो आत्मा की सत्ता नकली होती है, जो शून्यवादी है ना वो सब इसमें निकल जाती है। तो इसने कहा अन्वय मात्र नहीं है। अब इसके बाद पांचवा, जिसके लिंग से ही अर्थात अनुमान ज्ञान से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इसमें उसमें क्या फर्क है, उसमें अनुमेय वो कर्म बन रहा था, तो अनुमान ज्ञान आत्मा तो ऐसा अनुमेय पदार्थ ही है कि अनुमान का ही विषय बने, उसमें ये था। और इसमें क्या कहा, आत्मा की ताकत ही इतनी है कि अनुमान से ही जान सकता, इसलिए आत्मा अनुमाता मात्र। अंतर आया, ये बात समझना बहुत शॉर्ट में नहीं, इनका तो विस्तार बहुत ज्यादा है। सारांश, आत्मा केवल अनुमान से ही जाने ऐसा वह कोई पदार्थ नहीं है। साधक को अनुमान के साथ आंशिक स्वसंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और वह बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष ऐसा केवल ज्ञान होता है। जो भी बताया कि आंशिक, देखो केवल ज्ञान अपेक्षा सब चार ज्ञान के धारियों का जो ज्ञान है वो कैसा कहलाता है, आद्य परोक्षम परोक्ष कहलाता है। पूर्ण ज्ञान के अपेक्षा कोई आत्मा के प्रति शादी नहीं दिखते, लेकिन उसको स्वसंवेद स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा आचार्य ने, कि जैसे कोई आंख नहीं है गूंगा है, मिश्री का स्वाद उसको आता होगा कि नहीं, आता है, बोलता नहीं, उसका चेहरा प्रसन्नता बता देता है, ऐसे ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन सारे जगत के जीवों को और विषयों का, ऐसा कुछ जैसा आचार्यों ने टीका में लिखा है कि बार बार आप स्वसंवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या करते हो, तो उसमें वो लिखा है सबको हो रहा है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, वो तो बहुत, तो उसकी विस्तार करो तो ये पूरा अपना चक्ती गाते ही आ जाती साथ में, ख्याल में ना कि तुम्हारा स्वभाव कहीं गायब नहीं हो गया, तुम गायब हो गए माने तुम स्वभाव से मुड़ गए हो और दूसरे देखते हो विभाव की तरफ। तो देखो छठवां मूल अब आता है, माने ये कहना था मुझे साधक अवस्था में परोक्ष भी है आंशिक और आंशिक प्रत्यक्ष भी हुआ है, लेकिन उस आंतरिक प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान ने अपने पूरे केवल ज्ञान स्वामी आत्मा को, अरे केवल ज्ञान को देख लिया, ज्ञान लिया, जिसको श्रीमद जी ने लिखा है विचार दशा ही केवल ज्ञान थयू, श्रद्धा परीक्षा ही केवल ज्ञान थयू लिखा है ना, पढ़ते और क्या क्या है, विचार दशा ही केवल ज्ञान थयू श्रद्धा इच्छा, हाँ तो ये कैसे जाना ज्ञानी ने, कि वो स्वान व स्वाद प्रत्यक्ष से उसने पूरे स्वभाव को सामर्थ्य को पहचान लिया। अब इसकी बात आचार्य छठी गाथा में कहते हैं, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण। किसके द्वारा, अरे आत्मा का स्वलक्षण पूछा था ना आचार्य ने, वो ध्यान रखना, जब 172 गाथा आई तो उसके पहले 171 गाथा में कहा था ये औदारिक आदि जो पांच शरीर है ये पुद्गलमय, ये पुद्गल का रचना है पूरी, इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं है। तो वो शिष्य को प्रश्न हुआ कि भगवान फिर मुझे आत्मा का शरीर आदि परद्रव्यों से विभाग का साधन असाधारण स्वाश्रित लक्षण क्या है वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि चेतनामयपना है था ना उसमें, चेतनामयपना ये आत्मा का असाधारण स्वलक्षण असाधारण लक्षण है, लेकिन पुद्गलादि जड़ द्रव्यों से भिन्न पालने का, लेकिन मुझे तो मुझ आत्मा का चाहिए। तो कहते अन्य आत्माओं से भी भिन्न, अन्य जड़ पदार्थों से भी भिन्न मेरा जो ज्ञान जो स्वयं द्रव्याश्रित है, ऐसा लिखा मूल टीका, वह मेरा लक्षण, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वह मैं हूं और वही मेरा स्वयं लक्षण, अन्य जीवादि का लक्षण वो मेरा लक्षण, तो मेरे लिए मारा माटे पर जीवों पर भी अजीव अच्छे वो जीव रूप नहीं। अब अगला तो इसमें कहा छठे में, जिसके लिंग के द्वारा नहीं, अब लिंग माने कोई भी चिन्ह पर द्रव पर चिन्ह आदि जो भी है इंद्रिय आदि मन आदि, किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। किसके द्वारा ग्रहण होता है, स्वभाव के द्वारा। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है केवली के अपन, प्रत्येक जीव वो जो संवेदन उसका चल रहा है ना, कौन जगत में ऐसा जीव पदार्थ हो और वे कहे मैं नहीं, बोलता है कोई ऐसा मैं हूं, जड़ पदार्थ नहीं बोलते, तो मैं हूं की प्रतीति सबको है। कल जो थोड़ी सी बात आई थी ना वो परसेंटेज नहीं है, इसमें बहुत चर्चा हो गई, इसमें श्रद्धा में, श्रद्धा या तो पूरी होंगी या पूरी सीधी। लेकिन ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्मिक क्रम पड़ता है अविरति देश संयम सकल से पूर्णता होने के लिए। श्रद्धा तो एकदम घात करके जैसे बोलते ना ये मैं हूं, निसंकितता आ जाती है पूरी उसमें। वो भले समझाने में आए ऐसा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सम्यक दर्शन आधा अधूरा नहीं होता। चाहे औसमिक हो, चाहे छायोसमिक हो, चाहे छायक हो, उसमें मैं का असली मैं जो है जायक, उसमें अहमपना उसका 100% पूरा होता है। और मिथ्यात्म में भी पूरापन कैसा होता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, मैं काली, मैं ऐसा ही हूं। जैसे मिथ्या दृष्टि निसंकित है, समय दृष्टि निसंकित है, ये संशय होता है ना। कोई ज्ञानी की रचना सुने, तुम देह नहीं हो, तुम अरूपी चिद्रूपी ज्ञायक आत्मा हो, तो इसको संशय पड़े। तो संशय इज बेटर देन विपर्य। संशय खड़ा हुआ ना, ये बेटर है किससे, विपर्य से। ले सम्यक नहीं है कि ये करे आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, हूं तो आत्मा ने शरीर नहीं कर जानू छू, तो ये संशय खड़ा होना चाहिए। ये कहते हैं अपरिणामी हो तुम, कहां लिखा है, अरे वो भी मिल जाएगा समय सर 339 का तक की तत्परिवृत्ति टीका आदि में सब लिखा है। कैसे आत्मा पदार्थ है, परम परिणाम भाव द्रव्य है, और उसकी जो पर्याय है वो पर्याय सब मिलकर के दोनों आत्मा पदार्थ है, ऐसा भी सिद्ध किया। तो ये अपने ज्ञान में बराबर ज्ञात हो रहा है। तो कहते तुम अपने को जानने में नहीं आओ, तो अभी गुरुदेव ने दीपक का दृष्टांत दिया, मैं भी पहले दे चुका हूं कल परसों दीपक का दृष्टांत, कि दीपक ने इसका अंधकार मिटाया। उसमें से बात कहता हूं कि दीपक क्या दूसरों का प्रकाशित करने के लिए हुआ है, अरे दीपक ने तो ये सिद्ध किया है मैं प्रकाश पुंज हूं, और उसके प्रकाश में कोई प्रकाशित हो रहा था, उससे कोई तकलीफ भी नहीं। मेरा ज्ञान मेरे को ज्ञायक सिद्ध कर रहा है प्रतिक्षण, और उसमें ये झलक रहे हैं, तो झलको, हमको कोई तकलीफ नहीं तुमसे, मैं तो दर्पण हूं। दर्पण में क्या होता है, इनको झलकाना इनको नहीं झलकाना, लेकिन ये जीव क्योंकि अनादि से स्वयं को झलकता हुआ न देखता हुआ और पर ही झलक रहे हैं, इसमें इतना आरूढ़ हो गया, तो उसको कहते हैं तुम अपना 180 डिग्री टर्न करो, अबाउट टर्न हो, ये किसमें झलकना हो रहा है। झलकना माने वो दर्पण जैसा नहीं है, वो जड़ दर्पण का दृष्टांत है, उसमें तो सामने जो पदार्थ हो वर्तमान का वही झलकता है, लेकिन यहां तो त्रैकालिक। अरे अल्पक को प्रोचनसार का था देखो, 37, 37, 39 अतीत अनागत वर्तमान का सब झलक रहा है अल्पक के भी ज्ञान में। कल कौन सा दिन था माने, कल कौन सा दिन था भाई साहब, शुक्रवार, आज कौन सा है, कल कौन सा दिन होगा, कल होगा पक्का, रविवार ही होगा, आप त्रिकालक जी चलिए। सो आप से प्रत्यक्ष ज्ञाता है बतलाना था। अब सातवें बोल से लेकर के ग्यारहवें तक का मैं एक साथ कह देता हूं, समय अभाव है अपने पास, तो उसमें ये कहना है कि तुमने आचार्यों ने लिखा उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण किसका, जीव का। अब उस लक्षण को तुमने सही नहीं समझा, तो देखो इसमें पढ़ते हैं, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात गे पदार्थ को आलंबन नहीं है, वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, उपयोग को गे पदार्थों का आलंबन नहीं है, चैतन्य लक्षण उपयोग स्वयं आत्मा का अवलंबन करता है, पर का अवलंबन लेवे ऐसा उपयोग का स्वभाव नहीं। तो ये गेयों से ज्ञान होता है जो मानता है ना, उसको यहां पर निकाल दिया कि उपयोग गेयों से नहीं होता, बहुत दादी मानते हैं। टीवी देखने से ज्ञान होता कि नहीं होता, तो बहुत सारे दृष्टांत बनाए जा सकते हैं, नहीं होता। और जो बैठ के देखते हैं कहते उससे ज्ञान होता है, कितना क्या मान लीजिए कि मैंने कहा था ना, शायद वो बोल चुका हूं कि हम सब बैठे टीवी देख रहे हो, क्या देश का राष्ट्रपति देश के नाम संदेश प्रसारित कर रहा है और अंग्रेजी में बोल रहा है, और आप सब समझ रहे हैं तालियां बजाओ कोई अच्छी बात आ गई, मेरी पोल ना खुल जाए तो मैंने भी तालियां बजा दी कि पता नहीं क्या बोला, शब्द तो सुनाई पड़ रहे हैं, तो उससे ज्ञान हमें क्यों नहीं हुआ। तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि स्वावरण छेपसम लक्षण युक्ता विषय प्रतिनियत अर्थम व्यवस्था के परीक्षा, हर जीव का जितना ज्ञान का उगाड़ है तय प्रमाण में गई जन्म में आएगा, उसे प्लस माइनस कुछ नहीं होता। और वो जो विकास है संगीत पंचेंद्री का चारों गति का, अरे उसकी तो बात छोड़ो, एक इंद्रिय से सबका स्वयं पर प्रकाशन स्वाभ्यक्त होकर परिणम रहा। लेकिन संगीत पंचेंद्री को इतना उजाला मिल गया है कि उसमें स्वयं पर का दोनों का स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैं कौन छो क्या थयू सु स्वरूप छे मारू करो कौन संबंधी वर्गना छे राखू के ये सब निर्णय हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कहा गये उसे ज्ञान नहीं होता पर का अवलंबन वाला, और ये तो पराशित लक्षण हो जाएगा जीव का, यानी गे नहीं रहेंगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। तो समय सार 248 कलश में कहा है, जयचिंद चावड़ा साहब ने बढ़िया लिखा वहां पर, अज्ञानी के ज्ञान को तो गे पी गए। क्यों ऐसा शब्द डाला पढ़ लो भावर, अज्ञानी के ज्ञान को तो गे पी गए, क्योंकि गे है तो ज्ञान है। बेचारा क्या करे, तो गे नहीं तो ज्ञान कहां से होगा। तो ऐसे ऐसे मार्मिक सब उसमें दिए हैं। आठवां जो लिंग अर्थात उपयोग नाम लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, आत्मा उपयोग को कहीं बाहर से नहीं लाता है, ज्ञान उपयोग की निर्मलता एवं वृद्धि वह किसी भी पदार्थ में से नहीं आती है, वह तो क्रमशः अंतर स्वभाव में ज्ञान स्वभाव में से आती है। जरा सा दृष्टान शिवभूति मुनि, जरा सा ज्ञान था ना उनका, सम्यक था कि मिथ्या, सम्यक था, स्वर पर का विवेक था, और अंदर में ध्यानारूढ़ हुए और शुक्ल ध्यान शुरू हुआ जो शुरू में कहा था, तो क्या होता शुक्ल चाद्य पूर्वदा बोला था ना, इतना छेवसम विकसित हो गया, अचानक हुआ ना, अचानक हुआ व्यवहार में तो कहेंगे अचानक हुआ, जब भी नहीं था और इतना। तो भाई साहब स्वभाव के आश्रय से तो तुम अंतर्मुहूर्त में भरत चक्र में केवल ज्ञान ले सकते, कहां से आ गया, महाभारत में से, स्वराज में से, इंद्रभूति गौतम ग्रीक मिथ्या दृष्टियों का लीडर, प्लीडर, लीडर भी था प्लीडर भी था, उसको पकड़ के लाए कौन सौधर्मिंद, और जाकर के उसको वहां जैसे ही मानस तम देखा, अपन ने नहीं देखा होगा क्यों, अपन तो जैन है, वो तो अजैन था, अपन तो हर दिन देखते, क्या देखा था उसने जिन में, अचम्मा, और अंदर का पूरा जाति स्मरण, अंदर घुसता जाता पीछे मुड़ के नहीं देखता, और जिन दीक्षा लेता है स्वरूप मिलीनता होती है, पहले से सीधे साथ में चला जाए, ऐसा है जना क्या पूरा सही सत्य स्वीकार हुई और फिर छठवें में आ गए, और उसके बाद अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान और मनोपरय ज्ञान प्रकट हो गए। कहां से अचानक वृद्धि, गुरुदेव श्री कहते अचानक कुछ नहीं, तेरे स्वभाव समुद्र तो चैतन्य रत्नाकर स्वयं भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ये तो बात हुई इसकी, कहीं बाहर से नहीं लाना है। तो सास से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है, कहते ज्ञान तो ज्ञान में से होता है, कहीं बाहर में से नहीं होता है। नौवां जिसे लिंग अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, अन्न से नहीं ले जाया जा सकता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, कोई उपयोग रूप धन का हरण चोरी नहीं कर सकता, पर से जिसका घात ना हो, स्वयं स्वभाव से जो चेतना हो, स्वयं का आश्रय छोड़े नहीं पर का आश्रय लेवे नहीं, वही उपयोग का स्वरूप है। सारांश समझ में आया, हम केवल परमात्मा के अनंत ज्ञान सुख के धनी है, अपन उनसे भीख मांगे भगवान आपका क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, थोड़ा सा दे दो ना, तो देंगे कि नहीं भगवान, कन्यू से दानवीर है, अरे पूजन में पढ़ते हैं तुमसा दानी क्या कोई होगा, और जग को दे दी जग की नहीं दिया, प्राप्त करे भगवान हमें ज्ञानी नहीं बनाते, कैसा मूर्ख है, ज्ञानी है और कहता ज्ञानी नहीं बनाते, ये तो नमक चिल्ला रहा है मुझे खारा होना है, मिश्री चिल्ला रही मुझे मीठा होना है, कोई उपाय बताओ, अमेरिका में लंदन में भारत में कहीं तो होगा, वो जल में मीन प्यासी वाली बात हो रही है। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं तूने अपने स्वयं स्वरूप को उपयोग लक्षण को भी सही नहीं पहचाना, क्यों लक्षण से बाहर लक्ष्य नहीं है आत्मा, लक्षण से बाहर लक्ष्य होता नहीं। दसवें मूल में जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात सूर्य की भांति उपराग मलिनता विकार नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है, आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है। जो पानी बरसता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, होता है ना बादलों का डक साफ, और उसके बाद जैसे नीचे आया और धीरे धीरे जमीन को टच किया तो शुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। अभी डॉक्टर साहब ने बताया तो कौन अशुद्ध हुआ, मिट्टी का वो पानी। ये मिलावट, ये संयोग की कहानी रामायण शुरू हो गई संसार की। अब कहेंगे गंदा पानी है, बोलेंगे ना, बोलेंगे गंदा पानी है। अब बेबी की जन क्या करते, कथक फल डालो कि पानी गंदा हुए नहीं, शीतलता स्वभाव छोड़ेंगे, उसका उपाय बता दिया। अगर उसने स्वभाव को छोड़ दिया होता तो फिर ये बात साची हो जाती। जड़ भावे जड़ प्रण में चेतन चेतन भाव, कोई कोई ने छोड़े नहीं, कोई कोई ने पलटे नहीं, छोड़े आप स्वभाव, अपना स्वभाव को छोड़ करके। नियम सार की गाथा है ना, कौन सी 97 है, ये कौन सी 97, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रह प्रभाव नहीं, जाने व देखे में वही ज्ञानी करे चिंतन, ये कि स्वरूप है। तो इसलिए इसमें आत्मा शुद्ध उपयोग स्वभावी है। अभी वही पानी जब थोड़ा नीचे पड़ गया, कीचड़ हो गया, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे थे, अचानक पानी बरसा, पैर कपड़े गंदे हुए, कीचड़ बहुत उछल गया, कोई ट्रक निकल गया कुछ, अब उसको कीचड़ को किससे साफ करना, किससे, पानी से। तो आप सब पता लगाना कि पानी जल कीचड़ पैदा करता है या कीचड़ साफ करता है, क्या करता है, साफ करता है और पैदा भी करता है, पता लगाना। चलो हो गया। त्रिकाली द्रव व गुण की शुद्धता की भांति ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है, उसमें मलिनता नहीं। सोनमुखी उपयोग शुद्ध उपयोग में विकार मलिनता नहीं है, अशुद्ध उपयोग को उपयोग ही नहीं कहते, अशुद्ध उपयोग को उपयोग ही नहीं कहते। ऐसे ही दसवां बोल है। ग्यारहवां, लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौदगलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है वो अलिंग ग्रहण है। किसके लिंग अर्थ के क्या उपयोग और कैसा, पौदगलिक कर्म का ग्रहण। इस प्रकार आत्मा द्रव कर्म से असंयुक्त असंबद्ध है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश है, उपयोग द्रव कर्म को ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसमें मलिनता नहीं है, शुद्धोपयोग को जड़ कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अपने पास जो ज्ञान है, इधर मिथ्यात्व है, चारित्रमोह है, लेकिन आचार्य करे वो मिलता है ना, 1-6-3, ये 6 ने जहां सुना हूं गया छू, मिथ्यात्व फड़फड़ाया, गायब हो जाएगा। इसलिए ज्ञान ही उसको परास्त करता है, और ज्ञान ही ज्ञान का आश्रय लेता है, और आश्रय लेते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है मिथ्या की, भ्रम की। ये सबको भ्रम का भूत लगा, तो उसको यहाँ पर कहते हैं वो उपयोग लक्षण अगर कर्मों को ग्रहण करता हो। 164 कलश देख लेना, समय सारा दिखा कलश 164, जिसलिए कहा कि सिद्ध भगवान वहां कारमण वर्गणाए हैं, केवल ज्ञानोपयोगी है, उपयोग तो भी कहेंगे तो केवल ज्ञान उपयोगी चल रहा ना वहां, तो उपयोग अगर कर्मों से संयुक्त होता हो तो वहां भी फिर बन जाना चाहिए उनको, तो सारी प्रोसेस दी है। अरे तेरा उपयोग भी यहां पर कर्मों से चिपटता नहीं, बुलाता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। बंद के 5 प्रत्ययों में बताओ कहां उपयोग लक्षण लिखा है कि जो बांधता है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, ये 4 जो ये क्या है, ये दर्शन में चार तमोह के औदिक भाव, चारों के चारों। और योग सामान्य प्रत्यय है, और अंत अवस्था में तो वीर अपथाश्रय होता है, कोई कुछ बनते ही नहीं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उपयोग लक्षण शुद्धोपयोग स्वभावी, उसको उपयोग लक्षण कहा, उसका जड़ कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। 12वां, जिसे लिंग के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, स्वलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, आत्मा स्वस्वरूप का भोक्ता है, इंद्रिय विषयों का आत्मा में अभाव है, उनको वह कैसे भोगे, आत्मा पर विषयों का नहीं परंतु अपने ज्ञान दर्शन वीर आनंद और शांति आदि का उपभोक्ता है। एक जरा सा आप अभी अपन भोजन करेंगे जो जिह्वा पर कोई मिष्ठान आया मान लो, आपसे पूछा कैसा है, आप बोले मीठा है, ये मीठा है ज्ञान ने जाना, तो वो जो उस पदार्थ की मिष्ठान की मिठास है वो जिह्वा इंद्री में से और आत्मा में माने ज्ञान में चली जाती कि नहीं? नहीं जाती। ज्ञान मीठा होता कि नहीं? खट्टा पदार्थ खाया तो ज्ञान खट्टा होगा कि नहीं? गरम खाया तो गरम होगा कि नहीं? ठंडा खाया तो ठंडा होगा कि नहीं? क्या बात करते उससे पूछो तो, अरे क्या आनंद आया, ये आनंद किसमें से आया? आया तो किसमें से आया? इंद्रिय करो, जिह्वा में से, वो जड़ पदार्थ में से। तो मैं कहा करता हूं एक खाने में थोड़ा सो, दो खाने में दुगुना, दस खाने में दस गुना, सौ खाने में सौ गुना, गणित तो अच्छा है ना, हजार खाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए, उसमें से आता है ना। तो राग का स्वाद ले रहा था, राग बोला बस बस बस, वो तो फिर वोमिट करने लगता, था किधर उसमें, और उसका रस तो घाटी उतरी माटी, इधर चला गया उसके साथ ही अभेद, उसकी पर्याय सिर्फ ज्ञान ने दर्पण की तरह जाना है। इसके बाद तेरवा लिंग द्वारा था मन अथवा इंद्रिय आदि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीव तत्व जीवत्व को, ये जीव तत्व लिखा नहीं जीवत्व एक्चुअली, जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है, आप करेक्ट कर लें, जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव का अनुविधाई अनुसार होने वाला नहीं है। मात पिता रज वीरज मिलकी बनी देह तेरी, तो आत्मा का जीवत्व तो मात पिता के रज वीरज से नहीं पैदा हुआ है तू, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, आत्मा जड़ द्रव प्राणों से जीवित नहीं रहता है, आत्मा चैतन्य भाव प्राण से जीवित रहता है। आत्मा का जीवत धारण कर रखना द्रव प्राणों का अथवा माता पिता के रजवीर का अनुविधाई नहीं है। चौदहवा बोल है लिंग अर्थात मेनाकार का पुरुष आदि की इंद्रिय के आकार का ग्रहण जिसके नहीं है तो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा मेनाकार को अरे ये पुरुष स्त्री नपुं सहित जड़ इंद्रियों के आकार को ग्रहण नहीं करता। आत्मा संतान उत्पत्ति का लौकिक साधन मात्र नहीं है, आत्मा तो वीतरागी पर्याय प्रकट करने में लोकोत्तर साधन है। अन्य मती कहते हैं भगवान ने तुम्हें स्त्री बनाया पुरुष बनाया काय के लिए, पैदा करने के लिए। सुन लो आप, जगत में यही चलता है, तो जगत ऐसा मान बैठा है कि आत्मा ऐसा है। पंद्रहवा लिंग के द्वारा अर्थात अमेनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, प्रत्येक आत्मा अपने स्वक्षेत्र रूप असंख्य प्रदेशों में रहता है, ये तो सबको स्पष्ट है, ख्याल में है ना। अरे सिद्ध हो जाता है तो भी अंतिम देह प्रमाण किंचित न्यून स्वक्षेत्र में रहता है, अन्य मत वाले वो तो पूरे ब्रह्मांड में फसर गया, सब गप्पा है पूरा। तो ऐसा अपने को ये अन्य पाखंड अमेनाकार भी नहीं है। सोलवा जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव से तथा भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है। देखो जो लिखा ही इसमें ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। सारांश, द्रव वेद लोकरम जड़ शरीर की रचना है, वो अजीव तत्व है। भाव वेद पर के शरीर को स्पर्श करने का भाव भोगने का भाव पाप भाव है, ये पाप तत्व है। द्रव तथा भाव वेद का आत्म स्वभाव में अभाव है त्रिकाल, इसलिए ये भी गया। सत्रहवा लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वो अलिंग ग्रहण है। कोई बंधु का वही जिसका लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के वैरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, जब अंतर में निर्ग्रंथ दशा प्रकट होती है तब बाहर में शरीर की नग्न दिगंबर दशा ही होती है। संयम तथा संयम शौच के उपकरण मयूर पिछी और कमंडलू मात्र होते हैं, परंतु उनका आत्मा में अभाव है। ये बाहर का वेश आदि ये कोई आत्मा का चिन्ह नहीं है। अठारवा लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सारांश, अवेद आत्मा सामान्य जो त्रिकाली है वो गुण भेद अर्थात विशेष का स्पर्श नहीं करता। बहुत इनका तो बहुत विस्तार होना चाहिए और होता है। और इसमें ये कहना आचार्य को कि आत्मा में कितने गुण, के अनंत गुण, कितनी शक्तियां, अनंत शक्तियां, तो ऐसा समझता है जैसे कोई बारदाने में खसखस के दाने भरे हैं। ये मैंने दिया था ना शुरू में, देखता ऐसा नहीं है। जहाँ एक गुण वही अनंत गुण, लेकिन हर गुण अपने गुण का कार्य करता है, अन्य गुण का कार्य नहीं करता। इतनी स्वतंत्र द्रव गुण पर्याय की उसमें बराबर समझना, यानी गुण भेद भी हमारे त्रिकाली को अशुद्धता का वाचक बन जाता है। अभेद उसको कहना भेद, और जब प्रमाण में सिद्ध करेंगे तो कथनचित भेद अभेद आएगा, क्योंकि जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं, दर्शन है वो चारित्र नहीं, इनमें आपस में अतद भाव है। धर्म में, गुण में और पर्याय में तीनों में अतद भाव है। 106 गाथा प्रवचन सार, और 107 गाथा में वही द्रव सत गुण सत पर्याय सत की बात की जो अपन कहते हैं, और 108 में कह दिया तीन सत मत मान लेना, एक ही सत को हमने विस्तार किया। इसके बाद 19वें बोल में लिंग अर्थात पर्याय, अपर्याय विशेष इसका ग्रहण, जो ऐसा ग्रहण अर्थात अर्थावोध विशेष जिसके नहीं है, कि मैं जैसे गुण ज्ञान गुण से ये आत्मा, तो अकेला ज्ञान गुण जेट लो आत्मा नहीं, अभी यहां सिद्ध करेंगे 27 गाथा प्रवचन सार में लिया है। अरे अनंत गुणात्मक पदार्थ है तो तुम एक गुण वाला नहीं मान लेना, ऐसा बहुत विस्तार है उसमें। तो उससे मैं पदार्थ का बोध, तो कहते अर्थावोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग्रहण है, मैंने पदार्थ का ज्ञान अवबोध माने ज्ञान विशेष पर्याय से। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित ना होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। नित्य आत्मा अनित्य पर्याय का स्पर्श नहीं करता, एकदम सारांश एक वाक्य में लिख दिया। कौन सी अशुद्ध के शुद्ध पर्याय, अरे पूर्ण शुद्ध पर्याय भी, क्योंकि तू है त्रिकाली और वो है क्षणे, तू है वो द्रव स्वभाव, होना वो पर्याय स्वभाव, और तेरे है में जो है वही होता है, इसलिए है को स्वीकार कर तो होना हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। और 20वां बोल लिंग अर्थात पृथ्वी ज्ञान का कारण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव से नहीं आलिंगित, ऐसी शुद्ध पर्याय जितना है शुद्ध पर्याय के साहब अपन ने इतनी देशों सुनी, इतना सब सुना, मैं आत्मा कैसा हूं कि मैंने अनुमान ज्ञान से अनुमेय बनाया, तो अभी कहा ना आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और ज्ञानियों का उपदेश, उससे हमारे ज्ञान पर्याय में श्रुत ज्ञान में निज आत्मा का एक खाका बना। हाउ एम आई, मैं कैसा हूं, ख्याल में है ना, तो तुरंत प्रश्न हुआ रवि हो दे पमत्तो भाई फिर कैसा है, वो तो वो ही है। पंकज भाई आपने घी खाया है, घी की पूड़ी खाई है, कैसा स्वाद होता है, अरे तो फिर नहीं खाया होगा, बता नहीं सकते, ये अनुभव बताया नहीं जा सकता। तो इसमें कहते जो अनुभव हुआ, जैसे तेल की पूड़ी साथ में दी जाए एक मिला तो अरे ये तो कुछ अलग है, आता है कि नहीं स्वाद का डिफरेंस, तो ऐसे राग का स्वाद, जहर का स्वाद, आकुलता का स्वाद है। एक राग रहित निष्करण परमात्मा का लक्ष्य हुआ तो जो पर्याय शुद्ध प्रकट हुई, श्रद्धा ज्ञान चरित्र की माने भीत रागता की अकसाय स्वभाव का आनंद, उसका नाम शांति सुख, और उसका नाम धर्म, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। इसलिए हमारे अनंत सिद्ध भगवान अनंत भोगी है और सारे संसारी मिथ्या दृष्टि त्यागी है। समय हो गया इसलिए मैं यहाँ पर बराबर 45 मिनट में मैंने पूरा किया, बताना तो बहुत था इसमें, लेकिन ठीक है अपने समय की मर्यादा है। और अभी अपन ऐसा करें, अपनी करते हैं और उसके बाद बेंच से